ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा, पाप दादा जनमोल रतन, सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों का अपने ही घर में अपनों के द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे बीच हमारी आदरणीय सरोज दीदी जी उपस्थित हैं, जो हम सबको परमात्मा पिता की अनमोल रत्नों से सजाएंगी, संवारेंगी। उनका विषय है योग पर, क्योंकि सभी ब्राह्मणों की एक ही शिकायत होती है कि क्या करे, योग नहीं लगता। तो योग कैसे लगे, बीज स्वरूप क्या है, इस पर हमारी बीच आदरणीय दीदी हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय दीदी जी, वर्तमान समय बसंत कुंज द्वारिका सेंटर के इंचार्ज हैं, बहुत ही कुशलता से सभी सेंटरों का संचालन कर रहे हैं। इनके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों का जीवन संवरा है। पिछले 40 वर्षों से समर्पित रूप से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो इसे हम समझ ही सकते हैं कि कितना जीवन आपने संवारा होगा। और साथ साथ हमारी दीदी मैनेजमेंट कोर्स भी कराते हैं, ऑल इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उसमें कराते हैं कोर्स। दीदी के लिए तो क्या कहें, इतना ही कहते हैं कि आपका स्वभाव बहुत सरल है, आपका स्वभाव बहुत सरल है। ज्ञान सुनाकर करती सबको विमल है, जो करता ज्ञान का अमल है उसका जीवन बनता कमल है। तो ऐसी दीदी के लिए हम जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति। हम सभी शिव बाबुल से मिलने के लिए, विशेषकर वरदानी बाबा का स्थान बेहद बाबा का घर मधुबन में आते हैं। और मुझे याद आता है कि बाबा जब छोटे कमरे में मिलते थे, उसके बाद मेडिटेशन हॉल में, तो मुझे भक्ति का वो याद आता है कि जब भगवान का मत्स्य अवतार बोलते हैं, उसको पहले छोटे से लोटे में डाला गया, फिर उसके बाद उसे बाल्टी में डाला गया, फिर उसको तालाब में, फिर सागर में। तो हम सोचते थे इसका क्या अर्थ है। अब समझ में आता है कि जितना बाबा के स्थान बड़े बनते चले जाते हैं, वो स्थान भी छोटे पड़ जाते हैं। ठीक बात है ये। अब ये इतना डायमंड हॉल इतना थिकली पैक्ड होता है, और बाहर भी अगर हम देखते हैं, आंगन में भी भाई बहने बैठे होते हैं, 25,000 से संख्या ऊपर चली जाती है। इससे पता चलता है कि जो सर्वशक्तिवान का कार्य प्रैक्टिकल में इस धरा पर हो रहा है, और कितना डिसिप्लिन से। बाहर के लोग देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन बाबा ने कई बार कहा कि सेवाओं के क्षेत्र में बच्चों ने बहुत वृद्धि की है, लेकिन सेवा भी फलीभूत तब होगी जब अपनी स्थिति बहुत ऊंची होगी। और स्थिति बनेगी जब हमारा बाबा से योग बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बाबा ने हमेशा इशारा दिया है। आज भी कहा कि कई बच्चे लास्ट में आते हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, लेकिन उसका आधार है याद और पढ़ाई। यही कहा ना। तो अगर हमारा याद पर पूरा अटेंशन है, बहुत सारे भाई बहने पूछते रहते हैं, दीदी हम बहुत समय से बाबा की क्लास में आ रहे हैं लेकिन अभी तक हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा योग ठीक है या नहीं है, हम कैसे योग लगाएं। या फिर आप लोग हमेशा अलग अलग स्थितियों की बात करते हो और बाबा ये कहते हैं कि एक ऐसी बीज रूप की स्थिति है जिससे तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होते हैं, वो क्या स्थिति है, कैसे हम अपने जीवन में उसे लाएं ताकि हमारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाए। और यहाँ आने के बाद मेरे ख्याल में जानकारी जरूरी है क्योंकि बाबा ने कई बार ये कहा है कि ये स्थान बेहद कुंभ का मेला है, यहाँ जहाँ ज्ञान सागर और नदियों का मिलन होता है और कुंभ मेले में जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। हम भी यहाँ आए हैं किस लिए? हाँ, जो हमारे से कितने विकर्म हो जाते हैं उनका विनाश हो। मैं अपनी बहनों से हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि इस बार आप जरूर संकल्प करके जाएं कि आप इस कुंभ के मेले में क्या छोड़कर जा रहे हैं। ठीक बात है ना? आप सबसे भी पूछा जाएगा बाद में। और जब हम ये स्थिति सीख लेते हैं, वरदान रूप में इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने स्थान पर जाने के बाद भी उस स्थिति में हम रह सकते हैं। तो हम सभी मास्टर त्रिमूर्ति हैं, स्थापना, पालना और विनाश। अर्थात अंदर में श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना और विकल्प या साधारण संकल्प उसका विनाश, और साथ में जो श्रेष्ठ संकल्प हमने किए हैं उसको सस्टेन करना, उसकी पालना करना। क्योंकि कई बार हम लोग संकल्प बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन पालना स्वरूप में नहीं आते हैं। तो आप जो बहने खेती के बारे में थोड़ा जानती हैं, विलेज बैकग्राउंड से हैं, उनको पता चलता है कि पहले कोई भी अगर आप पौधा बोते हैं तो उसके लिए आप धरती को नरम करते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। लेकिन जो आसपास में उसके व्यर्थ की झाड़ियां हैं, वीड्स आ जाते हैं, उसका भी विनाश करते रहना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो जितनी पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती क्योंकि उसको सस्टेनेंस नहीं मिलती है, उसको पालना नहीं मिलती है। वो सारी पावर कौन ले जाते हैं? जो झाड़ियां हैं, वीड्स हैं। तो इसलिए उसका विनाश होगा तो पौधे को अच्छी पालना मिलेगी। हम सभी बाबा के घर में हैं, हमारी परवरिश भी तभी अच्छी हो सकती है हम अपना ये कार्य साथ साथ चलाएं, जो भी व्यर्थ की चीजें आ जाती हैं। इसलिए इस बेहद के मेले में जिसका लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की भावना है और कुछ अंदर में कमाई की भावना है, वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाते हैं, बहुत कुछ। बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में हम सब इतनी अच्छी जो यहाँ पर देख रहे हैं हर चीज, हम उसके लिए वी आर ड्रॉप ऑफ द ओशन, हम उसमें से एक बूंद भी नहीं है। और इस नजरिए से हम रहें और बाबा का शुक्रिया अदा करते रहें, अपने अंदर जो भी व्यर्थ की बातें हैं उसको खत्म करते जाएं और समर्थ को अंदर पैदा करें। और साथ साथ में जो बात निकली है बीज की, बीज जो है ये सार है और वृक्ष विस्तार है। बीज क्या है? सार, वृक्ष विस्तार है। जितना हमारी स्थिति सार स्वरूप होती जाएगी, जितना मैं स्वयं सार में रहूंगी उतना मेरे सामने जो आने वाली आत्माएं हैं वह भी सार से हमारे सामने आएंगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो ये बताया जाता है कि बाबा के सामने सोचते थे हम ये कहेंगे ये कहेंगे, बाबा की दृष्टि लेते ही अपनी बात को दो शब्दों में ब्रीफली ब्रीफ करके सुनाते थे। ऐसी शक्ति नहीं होती थी कि बाबा के सामने कुछ भी बोल दें। कारण क्या? क्योंकि बाबा स्वयं सार स्वरूप में स्थित थे। और अब ऐसा समय आने वाला है जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे ये 7 दिन का कोर्स कामयाब नहीं होगा, समय बहुत कम है और दिन रात 2 घंटे के बराबर हो जाएंगे, दिन रात 2 घंटे के बराबर, और तुम्हें अपनी कमाई का समय भी सेवा में देना पड़ेगा आगे चलकर। हम सोचते थे बाबा क्या कह रहे हैं, दिन रात 2 घंटे के बराबर हो जाएंगे, और आजकल हम अपने अपने सेवा स्थानों पर ऐसा फील करते हैं कि कैसे दिन शुरू होता है कैसे अंत हो जाता है, यानी कुछ पता ही नहीं पड़ता है। और हम सोचें कि घंटों घंटे हम किसी से बैठ के बात करें, संभव नहीं है। लेकिन हम उन्हें सार स्वरूप में अपनी दृष्टि से बाबा का परिचय दे सके, उसके लिए हमें स्वयं स्थिति का अनुभव करना होगा। तो वो स्थिति क्या है, जैसे बताया कि बीज मतलब सार, जैसे जितनी चीज शक्तिशाली होगी उतना सार में होगी, विस्तार में पावर खत्म हो जाती है। पहले आप देखते थे स्टीम इंजन होते थे, अब उसका रॉ मटेरियल उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, लेकिन जब वो स्टीम में चेंज हो जाता था भाप में, तो वो कितना सार स्वरूप में आ जाएगा। अब आप देखिए विस्तार से सार, और जितनी पावरफुल स्टीम बनती थी उतना जल्दी तेजी से इंजन दौड़ता था। आज हमारा यहाँ सोलर एनर्जी से जो भोजन बन रहा है, ये भी पीछे से क्या आ रही है, स्टीम से ही तो सारा कार्य हो रहा है ना। और आजकल तो चलो सोलर एनर्जी से है, लेकिन जब रॉ मटेरियल यूज होता था तो कितना होता था। तो जितना हम विस्तार में होंगे उसकी पावर कम होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। सार में स्थित होते जाएंगे, शक्ति ज्यादा होगी और वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें 2 शब्दों में सारा सार समझाना है। और ये बीज रूप की स्थिति क्या है, इसमें परिवर्तन करने की शक्ति है। जैसे कोई अग्नि में आप कोई भी चीज डालें, तो अग्नि में डालते ही उस चीज का नाम रूप देश और काल परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तेज में कोई भी चीज डालेंगे वो भस्म हो जाएगी, राख बन जाएगी। वो ओरिजिनल क्या थी वो चीज आपको पता भी नहीं चलेगा, टोटली उसको आप चेंज कर सकते हैं। या फिर हल्की आग में डालते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आग की एक बहुत खूबी होती है कि वो जो एलॉय है, जो खाद है, उसे बिल्कुल भस्म कर देगी और जो रियल चीज है वो निखर के बाहर आ जाती है। जितना हम योग की अग्नि में स्वयं को पकाते तपाते चले जाते हैं, तो जो हमारे अंदर विकारों की खाद है वो भस्म हो जाएगी और आत्मा रियल गोल्ड बन के बाहर आती है। तो वो जो निखार आता है उस हिसाब से, वो स्थिति इतनी शक्तिशाली स्थिति है कि आप किसी से भी जब संपर्क में आते हैं उसको भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आने वाली आत्माएं हैं वो देह अभिमान में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो जो बाह्य मुखी आत्माएं हैं या देह अभिमानी हैं, उनको आत्म स्वरूप में साधारणता को असाधारणता में, विकल्प को शुद्ध संकल्प में और व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी सामने आए उसका व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं किस में है, सार स्वरूप में है, आपने स्वयं को चेंज किया है। अगर हमने अपने को परिवर्तन नहीं किया है, सामने वाला बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, क्यों, इतनी ताकत कैसे आ गई? क्योंकि हम स्वयं को परिवर्तन नहीं कर पाए। और जब आपके अंदर परिवर्तन देखते हैं, वो अपने आप कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने समझ लिया है। तो ये ज्यादा अच्छा है या विस्तार में जाना अच्छा है, क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहता है जिसकी बीज रूप की स्थिति होगी वो सार स्वरूप स्थिति होगी, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति होगी, दूसरे को चेंज कर देगा। क्या चेंज करना है वो आपको बताया। और उसके बाद ये स्थिति लाइट और माइट स्वरूप है, लाइट हाउस एंड माइट हाउस। जैसे लाइट हाउस समुद्र के बीच में जितने भी आने वाले शिप्स हैं उनको रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। तो जो भी आए उनको गाइड करना, उनको रास्ता दिखाना, लाइट हाउस का काम करना और उन्हें शक्ति देना। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये स्थिति इतनी शक्तिशाली है, ये मास्टर रचता की स्टेज है, मास्टर रचता क्रिएटर। बीज क्या है? क्रिएटर है, क्योंकि उससे पूरा वृक्ष निकला है, बीज में पूरा झाड़ समाया हुआ है। लेकिन बीज की एक बहुत बड़ी खूबी है, क्या खूबी है आप शेयर कर सकते हैं? क्या खूबी है बताइए। भाई लोग बता सकते हैं, पांडव बताइए, भाई पांडवों में से कोई बताए। हाँ वो निकलती हैं, लेकिन डालियां कब निकलती हैं, कब निकलती हैं डालियां? जब ज्ञान रूपी पानी मिलने से। वो तो बहुत जरूरी है पानी मिलना, लेकिन इनिशियल स्टेज क्या है जब आप बीज बोते हैं? अपने को भूल जाता। ठीक बात है। और हमारी शक्तियां बताएं, अपने आप को छुपा लेता है, बहुत अच्छा। जब तक वो अपने आप को, आप धरती में बहुत अंदर गहराई तक नहीं डाल देते हैं बीज को, वो अपने को छुपा लेता है, उसके बाद ही वो अपनी रचना को प्रत्यक्ष कर सकता है। अगर आप धरती के ऊपर ऊपर बीज डालेंगे तो उससे कभी भी पेड़ नहीं निकल सकता। तो ये क्या है? गुप्त स्टेज है, बिल्कुल गुप्त, और इसमें कमाई बहुत भारी है। ये मास्टर रचता की स्थिति है, क्योंकि जो डाल डालियां हैं वो अपनी सुंदरता की वजह से नाम कमा रहे हैं, अपने कार्य की वजह से। लेकिन बीज क्या है? जिसके कारण से इनका महत्व है, टहनियों का या शाखाओं का या पत्तों का या फल फूल का, जिसके कारण उसका महत्व है, वो अपने को गुप्त कर लेता है। आज के समय में आप देखें, है ना, बाबा ने कई बार कहा कि आपने आत्म बॉम्ब तो छोड़ा है, परमात्म बॉम्ब नहीं छोड़ा है अभी तक, ठीक है ना? ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, बहुत गहराई है, बहुत अंतर्मुखी हैं, बहुत पवित्रता है, बहुत सादगी है, बहुत इनके अंदर प्यार है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, इन जैसा तो शायद ही कोई हो। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है। बीज को गुप्त रखा ना, बीज गुप्त है ना। ऐसे बाबा कहता है बच्चे जब आप देखेंगे नीचे बीज है उससे फिर पेड़ निकलता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब पेड़ पककर तैयार हो जाता है, उसकी एज पूरी हो जाती है, फिर उसके ऊपर बीज आ जाता है जो अगले वृक्ष की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो देखो ब्रह्मा बाबा को नीचे दिखाया है वृक्ष के, है ना, और फिर जब ये पूरा हो जाएगा कार्य फिर वो ऊपर में है। तो बाबा ने अपनी रचना को प्रत्यक्ष किया, अब रचना का काम है बीज को ऊपर लाना, फिर रचता को प्रत्यक्ष करना। तो बाबा ने तो अपने को गुप्त रख के रचना को प्रत्यक्ष किया, उन्होंने अपनी फर्ज अदाई की, लेकिन हमारी फर्ज अदाई बाकी है ना। हमारा क्या काम है जो बाबा कहते हैं सन शोज फादर, बच्चों से बाप का नाम रोशन होता है, बच्चे बाप का नाम बाला करते हैं। वो कब होगा जब हमारी ये स्थिति होगी, हम अपने को गुप्त करते जाएंगे। अभी तक भी देखने में आता है कि समय बहुत समीप है, लेकिन फिर भी नेम एंड फेम का कितना ख्याल रहता है, मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई जाने। लेकिन भगवान ने मुझे पहचान लिया, अब उसके बाद और कोई हमें जाने, इसकी क्या आवश्यकता है। गुप्त रूप में हम बाबा की सेवा करते जाएं, अपनी ऑनेस्टी से काम करें, तब हम अपने चरित्र से अपने बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अभी तो बस एक ही चिंता लग जाए कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम भक्ति में छोटे छोटे गीत, छोटे होते थे गीत गाते थे, नहीं मैं मान की भूखी, नहीं परवाह शोहरत की, तेरा एक नाम रह जाए मुझे गुमनाम रहने दे। नहीं मैं मान की भूखी, नहीं परवाह शोहरत की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा एक नाम रह जाए मुझे गुमनाम रहे। भक्ति में तो गाते थे, अब लिटरली भगवान धरती पर आया है और उसने हमें इतना ज्यादा सबके आगे प्रत्यक्ष किया है। अब अगर हमें वो अपना वायदा याद आ जाए कि तेरा एक नाम रह जाए, चाहे मैं गुमनाम हो जाऊं, करना है कि नहीं ऐसा? जो कहते हैं हम करेंगे ऐसा, हाथ उठाएं, जरा लंबा हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। जब तक हम अपने को गुप्त नहीं करेंगे, तब तक हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और ये बाबा कहते हैं इतनी शक्तिशाली स्थिति है, बीज अर्थात न्यारा और प्यारा, न्यारा और प्यारा। अब ऐसे न्यारे नहीं बने कि हम सबसे डिटैच्ड हो जाएं, थोड़ा सा जैसे किसी का मूड ऑफ होता है ना, तो वो आइसोलेट हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। हम पूछते हैं कि भई आज आप कुछ बात नहीं कर रहे, कहते बाबा कहता न्यारे बनो, बाबा कहता न्यारे बनो। न्यारा ऐसे थोड़ी बनना है, न्यारा ऐसा, इसलिए एक शब्द आता है लविंग डिटैच्ड, लविंग डिटैच्ड, प्यारे भी बने और न्यारे भी बने। अब उसका क्या तरीका है कि जब हम क्लास में बैठे हैं, आपके क्लास में जो आपका सहपाठी है उसको नींद आ रही है, उससे आप न्यारे बनो, उसकी नींद का प्रभाव आप पर ना आए। लेकिन हम किससे न्यारे बन जाते हैं, हैं? बाबा की मुरली से न्यारे बन जाते हैं। मुरली सुन रहे हैं, बिल्कुल हम रिटेन कर ही नहीं पा रहे, क्या कहा बाबा ने पता नहीं, कहते दीदी आज मैं ना बिल्कुल न्यारा होके बैठा था। न्यारा होके बैठने का मतलब मुरली से थोड़ी न्यारे होके बैठना है। जो भी व्यर्थ की बातें हैं किसी के अंदर भी हैं, हम उससे न्यारे हो जाएं। और सबके प्यारे, सबके प्यारे। तो ऐसी आत्माएं अगर अलग भी रहेंगी, अगर उन्हें बड़ों का आदेश मिला है कि आप यहां जाकर सेवा करके आए, उन्हें ये नहीं रहेगा मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे जाऊं, नहीं, मेरा सर्वशक्तिवान जिसके साथ मेरे सारे रिश्ते हैं, जो मेरा संसार है, वो मेरे साथ है। और ऐसे लोग एकांत अकेले में भी संसार में हैं, और संसार में रहते अकेले हैं, ठीक है, अकेले में संसार में है। संसार का मतलब मेरा साथी मेरे साथ है, बाबा कहीं भी भेजेगा साथी साथ है। और उसके बाद संसार में रहते अकेले मतलब इतने सारे लोग हैं, कई ऐसे होते हैं कहते दीदी अगर अलग रखोगे ना तो मैं चल सकती हूँ, ये सब संगठन इतना भारी, इनसे चलना बहुत मुश्किल है, तो ये तो अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है। सबके बीच में रहते हम इतने मिलनसार हो, क्या मुश्किल है? मैं पूछती हूँ मुश्किल क्या है भाई, किसी ने कुछ कह दिया आप उससे न्यारे हो जाओ, इतनी जल्दी रिएक्शन में हम क्यों आ जाते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बिना काम चल सकता है ना? तो अगर हम ऐसे न्यारे और प्यारे बने तब हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकें। सबके बीच में मुझे किसी से कोई मुश्किल ना आए, मेरी किसी के लिए कोई कंप्लेंट ना हो, क्योंकि मैं किसी की कमजोरी देखूं तो मेरे में कंप्लेंट आए ना। बाबा ने इतना अच्छा आज साक्षी की जो बात कही है, साक्षी का मतलब जो भी जो कर रहा है, हम कहते हैं ये राइट नहीं कर रहा, रॉन्ग कर रहा है, लेकिन जो भी जो कर रहा है अगर वो ये सोच ले कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं तो करेगा ही नहीं, इसका मतलब अपने हिसाब से वो राइट ही है। तो हमें उसके लेवल से सोचना है कि जिसका जितना स्टेटस भविष्य में होने वाला है उस बेसिस पे उसका पुरुषार्थ चलेगा, मुझे इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं, और मजबूरी से नहीं, बहुत खुशी से। कई बार हम कहते हैं चलो क्या करें, बाबा कहता है सबका पाठ है, अब देखो साक्षी होकर, ऐसे बोलते, ये मजबूरी से नहीं, ये तो हमारी नेचुरल स्टेज होनी चाहिए, और इस स्थिति को हम एंजॉय करें, हम इसका आनंद लें, और जितना हम इस स्थिति का आनंद लेंगे उतना हमारा योग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम किसी से, ऐसे व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से प्रभावित नहीं होते, और प्रभावित जो होते हैं वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, हमें किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि जब हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी तो प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे आने वाले समय में आपके पुराने संस्कार जो अंदर के विकार हैं, पुराने संस्कार हैं, ये भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, इनका प्रकोप भी आपके सामने आएगा, और इविल स्पिरिट्स का प्रकोप भी बहुत होगा, लेकिन इनका वार किन पर होता है, जो आत्माएं शक्तिहीन हैं, कमजोर हैं, शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये नहीं ठहर सकते, ठीक है। तो बाबा की जो याद है, ये बीज रूप की स्थिति है, ऐसी शक्तिशाली स्थिति है जिसके आगे ये नहीं वार कर पाएंगे, तो इनसे बचने के लिए भी ये स्थिति बहुत जरूरी है, इसका अभ्यास करना। बाबा ने कहा पहले कचरा सारा बाहर और फिर ये इसको, यानी अपनी कमजोरियों को मैं आइडेंटिफाई करूं और फिर इसको योग की शक्ति से भस्म कर दूं, ये भस्म करने वाली स्थिति है। अति के बाद इति, हर चीज की अति, फिर बाद में इति मतलब समाप्त, सारा कचरा बाहर निकलेगा और फिर समाप्ति हो जाएगी सृष्टि की। इसलिए चारों तरफ से जितनी भी विल स्पिरिट्स का वार हो रहा है, संस्कारों का प्रकोप आ रहा है, इसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये अति की निशानी है और बाद में फिर क्या होगा, इति। परंतु जितना हमारा योग शक्तिशाली है, बीज रूप की स्थिति अच्छी है, तो हम इसको समाप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बिल्कुल, क्योंकि ये मास्टर रचता की स्टेज है, जिम्मेवारी की स्थिति है और पालना की स्थिति है, मतलब आप पालना देने वाले हैं, और ऐसी आत्माएं ही राजाई घराने की आत्माएं बनती हैं, कि राजा हमेशा प्रजा पालक होता है, उसकी अपने प्रति इच्छाएं नहीं रहती हैं, दूसरे की इच्छा पूरी वही कर सकता है जिसकी स्वयं के प्रति इच्छा समाप्त हो जाए, जिसकी अभी तक स्वयं के प्रति इच्छाएं हैं वो दूसरों की इच्छाएं क्या पूरी करेगा। तो इसलिए ये स्थिति पालना देने की स्थिति है, अगर अभी तक भी हम डिमांडिंग हैं सेल्फ के प्रति तो फिर हम दूसरे की इच्छा कैसे पूरी करेंगे, संभव नहीं है ना। तो सदा सोचें कि मैं मास्टर रचता हूं, मैं मास्टर बीज हूं, मैं जिम्मेदार आत्मा हूं, मैं आधार मूर्त हूं, मैं उद्धार मूर्त हूं, है ना, मैं साधारण प्रजा बनने वाली आत्मा नहीं हूं, रॉयल संस्कार देने वाले, दातापन के संस्कार। अब हम लोग धन तो लगा देते हैं भगवान की सेवा में, बहुत आसान है धन लगाना, मटेरियलिस्टिक चीजें लगा देते, लेकिन कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, हर बात में ये आता है मैंने किया, होना क्या चाहिए है, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, करावन हार करा रहा है और आप सबके कारण से आज ये सफलता मिली है, इसमें मेरा कोई अकेले का हाथ नहीं है। जो ये वी कंसेप्ट है ना, बिकॉज ऑफ वी सोल्स, ये नहीं है कि मैं अकेले में अपने आप में कुछ हूं, नहीं। तो जब हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, कोई भी कार्य हमने किया, क्रेडिट लेने के लिए आप दूसरों को आगे करें, ये भी एक पालना का संस्कार है। हम कभी कभी कॉर्पोरेट्स में प्रोग्राम देने जाते हैं, हम उस दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी में गए कार्यक्रम देने, तो उनका ईडी सामने बैठे थे, तो अपने ईडी की बहुत तारीफ कर रहे थे वो, तो मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये सब मेरी जो टीम है ना, इनकी वजह से हमारा संस्थान चल रहा है, दे आर वेरी पावरफुल। अब देखो उन लोगों को भी ज्ञान है कि अपने साथियों की वजह से हम सफल हैं, और बाबा ने हमें ये सब कितने समय से सिखाया हुआ है, और इसी में हम फेल्योर हैं। हर एक अपने आप को सूक्ष्म चेक करे। कभी कभी तो ये भी ख्याल आ जाता है कि देखो भाई ये काम तो करता नहीं है, करती नहीं है, और जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है ना, अब देखो ये बड़ी दीदी आने वाली है, अब ये हिलाने आ गई है कड़छी, ये अभी तक सिमटी हुई थी, बाहर आई नहीं, काम तो सारा हमने किया है, लेकिन उस समय भी हमारी स्थिति एक त्याग की रहे। ठीक है, नोटिस में देना जरूरी है बड़ों के, ताकि उसका भी कल्याण हो आगे के लिए, परंतु हमें उसके प्रति भावनाएं ऐसी रख लेना या नाराजगी लेना वो भी राइट नहीं है। जिसका जो पार्ट है उसका अच्छा है, पर मुझे अपने पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना। जानकी दादी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और मैंने हमेशा ध्यान पर रखा है अपने, दादी ने एक बार बताया कि जो करेगा सो पाएगा, कहते जो करेगा सो पाएगा। अब गलती दूसरा कर रहा है और दुखी और परेशान मैं हो रही हूं, तो उसने गलती की तो उसको मिलना चाहिए ना, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूं। समझो आपने मुझे कुछ अच्छा नहीं कहा तो मैं क्यों दुखी हो गई, आपने नहीं कहा ना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे डिस्टर्ब होने क्या जरूरत है, है जरूरत। आपने नहीं कहा वो आपके शब्द हैं, आपका हिसाब किताब है, पर मैंने बदले में तो कुछ आपको कहा ही नहीं, तो मैं तो सुरक्षित हूं ना। तो जो करे उसको मिलना चाहिए, मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है। हम कहते सबके बीच में इसने मुझे कहा, मैं तो बहुत दुखी हो गई, मेरे को तो सवेरे से रोना ही आ रहा है, भाई रोना क्यों आ रहा है, कहा उसने वो रोए ना, मैंने तो कहा नहीं, मैं क्यों रो। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रख लें तो हमारी एनर्जी सेव होगी। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करें, इसके लिए हम बचत की स्कीम बनाएं। बचत समझते ना, जैसे बजट बनाते हैं, तो बजट बनाने का मतलब है कि उसमें से आपकी आमदनी कितनी है, आपने उसमें पिछला कोई आपका खाता है, कर्ज है, उसको भी चुकाना है, वर्तमान में सर्वाइवल के लिए भी रखना है, और फिर वर्तमान भी खाना और आगे के लिए भी जमा करना है। तो आपको पहले से बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम बजट बना के चलो, आप योग तो लगाते हो मुश्किल से आधा घंटा, उसमें से ही पता नहीं कितना लगता है, ठीक है, और खर्च कितना हो जाता है बताओ। फिर बाबा को कहेंगे बाबा हम दोनों एक ही क्लास में आते थे, ये तो फिर भी लेट आता था, मैं सबसे पहले क्लास में आके बैठता था, बैठती थी, और इतने साल में लगातार कांस्टेंट क्लास में आती रही, मेरा कोई मतलब कोई उसका आउटकम नहीं है, क्या रिजल्ट मिला है मुझे, टीचर्स को ही बोलते हैं क्या मिला है मुझे, लेकिन आपने बजट तो बनाया ही नहीं, आपने जितनी आमदनी की उससे खर्च ज्यादा कर लिया, तो हुआ क्या, कईयों की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो बचा लेते हैं। कईयों की बहुत सैलरी होती है लेकिन हैंड टू माउथ रहते हैं, और बल्कि कुछ ना कुछ उधार ही लेते रहेंगे। तो हमको भी हंसी आती है कि इस व्यक्ति को अपने को मैनेज करना आता है, इतनी सैलरी, और उसके बाद इसके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि बजट बनाना नहीं आता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बजट बनाना है, बचत की स्कीम बनाएं, सकारात्मक और समर्थ संकल्पों को एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें, संग्रह करें, और जितनी हम इन संकल्पों का संग्रह करेंगे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। इससे हमें परखने की और निर्णय शक्ति में निखार आएगा। और जो बाबा कहता है कि कम खर्च बाला नशीन, थोड़े समय में ज्यादा सफलता, शब्द कम रिजल्ट ज्यादा, समय कम रिजल्ट ज्यादा, रिसोर्सेज कम खर्च होंगे रिजल्ट ज्यादा आएगी। कब? जब हमारे अंदर शक्ति जमा होगी, जब हम बचत करना सीखेंगे। और बाबा ने कहा इसके लिए एक शब्द और याद रखो, नॉट एंड डॉट, नॉट एंड डॉट। ये दादियां जो इतनी मतलब तपस्विनी हैं, जिनकी दृष्टि के लिए हम लंबी क्यू में खड़े होते हैं, इन्होंने एक फॉर्मूला पक्का किया है, नॉट एंड डॉट, नेगेटिव एंड वेस्ट, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली, एंड जस्ट अप्लाई डॉट। डॉट मतलब क्या? फुल स्टॉप। ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छा नहीं है, ये डॉट है या क्वेश्चन है? आश्चर्यसूचक है, बताइए हमको क्या लगाना चाहिए? डॉट। जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो हो गया और जो होगा बहुत अच्छा होगा। बस फिर देखो शक्ति कितनी जमा होती है, और व्यर्थ और नेगेटिव नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं। और देखो इंसान के देने से कभी पूरी नहीं पड़ती है, और जब दाता देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और कोई किसी का भाग्य ले नहीं सकता है। इसलिए कहीं हाथ ना लगे ना कुछ भी, तो शिव बाबा से अच्छी तरह योग लगा लो, वो आपको ऐसा देगा आपको किसी तरफ देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं। और बाबा कई बार हम योग में बैठते ना तो बाबा हमसे हम बात करते हैं, बाबा हमको कहता है बच्चे आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, जानते हो मैं किसको हेल्प करता हूं, जिसमें एक भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट न हो। और अगर कभी आ भी रहा हो तो हम कहते हैं भैया आखिर भगवान से मदद लेनी है तो बिल्कुल शांत रहो। कई कहते ना अपने बॉस से बिगाड़ के नहीं रखनी चाहिए, वो हमारा बिग बॉस है, अगर हमने कभी भी उसके खिलाफ कोई काम कर लिया आप सोचो कहीं संभल भी नहीं पाएंगे। ये फिलॉसफी हम सबको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है ना। इसलिए किसी के बारे में हमें नहीं सोचना, चिंतन नहीं चलाना, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उसे समझा सकते हैं, प्यार से बता दीजिए, वो नहीं समझता तब भी बहुत अच्छा है, समझता है तब भी बहुत अच्छा है, उसको देख के मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। और दूसरा बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति पे स्थित होके कर्म करें। जो भी हम जैसे कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले तोलो, ऐसे पहले का स्लोगन ज्ञान में आने से पहले का ये था, इन आज का स्लोगन है सोचने से पहले भी सोचो। जो आप सोच कर रहे हैं ये किस क्वालिटी की सोच है आपकी, और ये सोच आपको कहां ले जाएगी, ठीक है ना। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब मेरे पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं लर्न करूं कि मैंने इन बातों की वजह से मैं पीछे रह गई, अब मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगी, और आज जो मैं कर्म कर रही हूं इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। आज का जो कर्म है वो बाबा के हिसाब से है, श्रीमत से है। आज बाबा ने कई बार कहा मुरली में, बहुत बच्चे मतवाले बन जाते हैं। मतवाले क्या हुआ? मतवाले, मतवाले मतलब अपनी मत चलाते हैं, अपनी मत चलाते हैं, और खाली अपनी मत चलाते हैं स्वयं के लिए नहीं, झुंड भी इकट्ठा करते हैं, औरों को भी खराब करते हैं। तो बताओ कितनों का डेबिट हम पे आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए कोई बात अगर नहीं समझ में आती, बड़ों से गाइडेंस लो और उसको ठीक कर लो, कहीं कंफ्यूजन आता है तो। बाकी हर एक से शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले और आप राइट ट्रैक के जगह रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएं। तो ये क्या करना है लास्ट में हमें, त्रिकालदर्शी जो मैं कर्म करूं श्रीमत पे है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, आदि मध्य अंत सोच के कर्म करो, त्रिकालदर्शी। और इसलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी सीट पे स्थित रहना, अर्थात साक्षी स्थिति पे स्थित रहना। तो ये कुछ बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं, और ट्रस्टीशिप की भावना हो, ट्रस्टी की तो बहुत बड़ी बात है, कभी हम लोग चर्चा करते हैं तो उसका काफी लंबा विस्तार है, बड़ी गहराई है इस सब्जेक्ट की, लेकिन मोटे रूप में मेरा कुछ नहीं, किसका है, बाबा का है, और ये सब कुछ मुझे बाबा ने अमानत दिया है इस सेवा के लिए यूज करने के लिए। अगर उसमें मेरापन आ गया तो अमानत में क्या हो जाएगा, खयानत हो जाएगी। तो ये भावना भी हमें हमारी स्थिति को बहुत अच्छा बनाएगी। तो जितना जितना हमारे में ये भावना आएगी, निमित्त भाव की भावना, ट्रस्टी की भावना और नॉट एंड डॉट, त्रिकालदर्शी स्थिति, बचत की स्कीम, ये थोड़ी सी बातें अगर हम अपने जीवन में ध्यान पे रखें तो धीरे 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 हमारे संकल्प शांत होते जाएंगे, शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि कहते हैं भोजन को हजम करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और भोजन के बाद जब हजम हो जाता है तब शक्ति मिलती है, तो योग लगाने के लिए भी शक्ति चाहिए। अगर हम पूरा दिन व्यर्थ में अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे ना, हमारा योग कभी नहीं लग सकता, क्योंकि शक्ति नहीं है ना। योग लगाने के लिए भी शक्ति चाहिए, फिर शक्ति, योग लगाने के बाद जो शक्ति मिलती है वो मेरे सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है। पर उसके लिए जो शक्ति चाहिए, उसके लिए सबसे पहले प्रिकॉशंस क्या है कि मैं संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ ना करूं, इसको जमा करूं और कार्य क्षेत्र पर रहते भी बिल्कुल शांत स्वभाव से कर्म करें। शांत का मतलब मन हमारा ज्यादा न चले। इसे दादी हमेशा एक बात कहती है कि बुद्धि चलाना सबको आता है, लेकिन बुद्धि को शांत रखना किसी भाग्यशाली आत्मा को आता है। बुद्धि को शांत रखना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, बुद्धिजीवी, वो तो बिना किसी वजह के भी बुद्धि चलाते रहेंगे, लेकिन हमें चलानी है कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, बाकी कामों के लिए नहीं। ठीक है, ओम शांति। कोई अगर आपके मन में इस बात के लिए कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं, नहीं तो बाबा से योग करेंगे।